सुधी जनो आता हूं। ईश्वर की सृष्टि में जब प्राणियों को पैदा किया गया, प्राणी मतलब जो लिविंग बींग है, उससे पहले उनकी जो जरूरतें हैं ईश्वर ने उनकी व्यवस्था की। ये खूबसूरत पृथ्वी बनाई, उसके अंदर अनगिनत तरह के अलग अलग तरीके के दुनिया बसाया, ऊंचे पहाड़ों से लेकर गहरे समुद्र तक, हर तरह के पेड़ पौधे फूल फल प्राणी पशु पक्षी व्यवस्थाएं मिट्टी बनाई। और ये लाखों करोड़ों सालों के तक व्यक्ति इसको भोग सकता है। ईशावास्य उपनिषद कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी तुम दुनिया में देखते हो, जो कुछ भी दुनिया में है, सब वो ईश्वर का है। तुम भोगो तेन त्यक्तेन भुंजी था, तुम भोगो ये समझ कर कि वो उसका है। क्योंकि भोगने में मना नहीं है, समस्या है कि हम भोगते कम है, अपना बनाने की समस्या में ज्यादा रहते हैं। जमीन में जान होती तो कितना मजाक उड़ाती इंसान के कि जिस जमीन के लिए हम लड़ते हैं, जमीन में जान होती तो वो जरूर मुस्कुराती। हजारों सालों से कितने लोग इस जमीन के टुकड़े के लिए लड़ते रहे, फिर मर गए, उसके दूसरा आदमी आया, वो भी दरवाजा बनाया दीवार बनाया, वो भी मर गया, फिर तीसरा आदमी आया। हजारों पीढ़ियों से लोग दावा करते हैं जमीन मेरी है, दावा करते करते मर जाते हैं, जमीन वही की वही पड़ी हुई है। क्योंकि जमीन दावा करने वाला का नहीं है, तुम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक जियोगे, तुम्हें सिर्फ भोगने का अधिकार है, मालिक बनने का नहीं है, क्योंकि तुम्हें आफ्टर ऑल मरना है। दो लाख की ये धरती, 2 लाख साल की, सिर्फ 200 साल में ऐसी हालत में पहुंच गई कि आगे हमारी जो अगली पीढ़ी आ रही है, मुश्किल से 40-50 साल के बाद वो इस धरती पर रह सकेगी, वो हमारी अगली पीढ़ी या नहीं, ये शंका का विषय है। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, दुनिया भर में गर्मी बढ़ रही है, क्लाइमेट वातावरण में बदलाव आ रहा है, रेगिस्तानों में बाढ़ आता है, भारत में राजस्थान के जो रेगिस्तानी एरिया बीकानेर वगैरह वहां बाढ़ आता है, और क्योंकि वहां वो आदत नहीं है, वहां का वातावरण ऐसा नहीं, बारिश होती है बाढ़ होता है तो साल भर तक पानी जमा रहता है। आसाम मेघालय जहां बारिश के कारण फेमस है, वहां सूखा पड़ते हैं, दुनिया भर के ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं, दुनिया के बड़े सारे छोटे मोटे द्वीप डूबने के कगार पर हैं, नई नई बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां सर्दी जुखाम के तरह हर किसी को होने लगे हैं, कैंसर, ऐसे कैंसर फैलता है, ऐसे लगता है जिसको सुनो कैंसर है, जैसे कोई बड़ी बीमारी नहीं, कोई सर्दी जुखाम है, हर किसी को होने लग जाता है। इतने तरह के कैंसर और इतने तरह की बीमारियां जो दुनिया ने कभी सुनी नहीं थी। क्यों? ये जो मॉडर्न साइंस है, आधुनिक विज्ञान, मुश्किल से 400 साल पहले ये 16वीं शताब्दी में 16 सेंचुरी में हमारे सामने ये आधुनिक विज्ञान का रूपरेखा आई। 200 साल में हम उस विज्ञान के द्वारा नई नई टेक्नोलॉजीज निकाले अपने सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। सिर्फ 200 साल में हमने अपनी बुद्धि से, अपने विज्ञान की तरीके से इस धरती को इतना नोचा, इतना शोषण किया कि करोड़ों साल की धरती अब थोड़ी देर के थोड़ी दिनों के बाद बर्बादी के कगार पर है। कोई चीज बचा नहीं है। हमारे समुद्र जहाजों के कचड़े और ये कच्चे तेलों के इसमें भरा पड़ा है। हमारी नदियां सूखती जा रही है, गंदी होती जा रही है। जमीन बंजर होती जा रही है, जिस तरह के हम एग्रीकल्चरल केमिकल्स डालते रहते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। जंगल के जंगल साफ होते जा रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर। हमने किसी को नहीं छोड़ा। हमारा वायु सांस लेने लायक कम होता जा रहा है, ऑक्सीजन कम होता जा रहा है, बाकी हर तरह के कार्बन चीजें बढ़ता जा रहा है। हमने स्पेस को भी नहीं छोड़ा। इतने सारे स्पेस शटल छोड़ रखा है ऊपर, उसके कचड़ों से भरा पड़ा है। अगर वही टकराएंगे तो धरती को कितना नुकसान होगा। हमने दुनिया के जो बड़े बड़े माउंटेन से वहां भी नहीं छोड़ा, पर्वतारोहण के चक्कर में वहां जाकर के सारे कचड़े प्लास्टिक के कचड़े भर के आ जाते हैं। परिणाम क्या हुआ हमें यह नहीं पता कि मेरा बच्चा आगे 60-70 साल का होगा तो उसके लिए वो 50-60 साल की उम्र में धरती में रहने लायक वो होगा नहीं होगा। उसका मूल कारण है इंसान का लालच, अधिक से अधिक सुख बटोरने के लिए। और जो उसने अपने दिमाग से ये मॉडर्न साइंस या नया विज्ञान का आविष्कार, नए विज्ञान का खोज किया, उसके कारण जो उसके अंदर एक एरोगेंसी है, जो घमंड है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये इंसानी घमंड और लालच इस धरती को हमारी अगली पीढ़ी के लायक नहीं छोड़ा। इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने जिस यज्ञ की कल्पना की, जो धर्म की परिभाषा दी, वो धर्म का अर्थ यही था कि धर्म क्या है, थारयतीति धर्म, आपका ऐसा आचरण जो दुनिया को समाज को सस्टेन करे, बनाए रखे, वो धर्म है। धर्मो धारयतीति धर्मो धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। महाभारत में धर्म की परिभाषा करते हैं, इंसान का जो व्यवहार है अगर वो सही ना हो, वो अगर समाज के विश्व के अनुकूल ना हो तो वो खुद तो बर्बाद होता है, ये संसार भी बर्बाद होता है। धर्म को बचाने पर धर्म हमें बचाता है, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म को मारने पर मरा हुआ धर्म हमें मारता है। धर्म क्या है कि आपका ऐसा व्यवहार जिसमें आप जी सको, दुनिया भी जी सके। यज्ञ का भी यही कॉन्सेप्ट था। गीता में भगवान कृष्ण लिखते हैं, जो अकेला खाता है वो पापी होता है। मोघमन्नम विंदते अप्रचेता, ये ऋग्वेद का मंत्र है जिसका अनुवाद गीता में है। सत्यम ब्रवीमि बधयेत् सतस्य नार्यमाणं पुष्यति नो सखायम् केवलाघो भवति केवलादि। जो अकेला खाता है वो पाप खाता है, जो सबको साथ लेकर खाता है वही यज्ञ करता है। यज्ञ करना और पाप खाने का दोनों अपोजिट माना गया। यज्ञ का अर्थ वही जो आप आहुति देते समय करते हैं, आप घी खाएंगे तो आपके अंदर कुछ एनर्जी होगी, कुछ कोलेस्ट्रॉल होगा, कुछ फैट बढ़ेंगे, पर उसी घी को एक खास तरीके से अगर आप आहुति कर देते हैं तो आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है, आपके हवा को, आपके पानी को, आपके बादल को शुद्ध करता है। अगर हर आदमी ऐसा करता है तो पूरी धरती शुद्ध होता है। यही भावना यज्ञ की है कि जब हम दूसरों की ख्याल रखते हुए खुद जीते हैं तो हम सचमुच जीते हैं। जब सिर्फ और सिर्फ खुद का ख्याल रखते हैं तो फिर हम तो जी जाएंगे जैसे तैसे, हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ बचाकर नहीं जाते हैं। इंसान जब इस भाव को भूल जाता है, इस यज्ञीय भावना को भूल, इसीलिए जो आपके लिए पांच महायज्ञों की कल्पना की गई कि हर इंसान को, हर गृहस्थी को पांच महायज्ञ जरूर करना है। ब्रह्म यज्ञ, रोज कुछ अच्छी किताबें पढ़ो और ईश्वर की भक्ति करो। देव यज्ञ, प्रकृति की रक्षा करो। वो प्रकृति की रक्षा का उपाय क्या बताया? अग्निहोत्र करो। आज अग्निहोत्र पर ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते, और किसी दिन करेंगे। इसके कितने सारे रिसर्च हो चुके हैं, वायुमंडल को शुद्ध करता है, कितने तरह के बैक्टीरिया वायरस को ये नष्ट करता है। अगर सही ढंग से हम अग्नि में घी और वो जो विधिवत सामग्रियां प्रयोग करते हैं, आहुतियां डालते हैं, कितने वातावरण में शुद्धता लाती है। स्वामी जी ने लिखा यज्ञ क्यों करना? बोले पुण्य कमाने के लिए नहीं, यज्ञ अपने अपराध के प्रायश्चित के लिए करते हो। बोले क्या अपराध? बोले इंसान प्रतिदिन इस पृथ्वी को, वायुमंडल को दूषित करता है अपनी गंदे चीजों से, मल त्याग करता है, पेड़ों को काटता है अलग अलग तरीके से, उसकी प्रायश्चित के लिए वो यज्ञ करता है, जिससे वायुमंडल शुद्ध रहे, सुगंधित रहे, जिससे मेघ बादल ठीक हो, सही शुद्ध जल हमें मिले, हमारा आसपास का वातावरण शुद्ध रहे। बोले फिर क्यों कहा यज्ञों वही यज्ञ से स्वर्ग मिलता है? स्वर्गमल सुख, तुम्हारे जंगल नहीं रहेंगे, तुम्हारे आसपास पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तुम्हारा वायुमंडल दूषित होगा, तुम्हें पीने के पानी के लिए लड़ना पड़ेगा, तो कौन सा सुख मिलेगा? दुनिया में जो अगली लड़ाई लड़ी जानी है, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, द्वितीय तृतीय विश्व युद्ध, वो पानी के लिए। अभी जितनी लड़ाइयां वो तेल के लिए होती है, हो रही है, वो इराक पर हो, ईरान की धमकी हो, अफगानिस्तान हो, कहीं तेल कब्जा कौन कितना करे, पर अगली लड़ाई हम पानी के लिए लड़ेंगे। हर शहर में, हर गांव में पानी के लिए तरसेंगे। अगर इंसान, और खास करके भारतीय संस्कृति के पुरानी व्यवस्था को अपना सके, ऐसा नहीं कि ये कोई हिंदुस्तानी बड़े दूध के धुले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर हमारे शास्त्रों में है। हमारी पुरानी व्यवस्था ऐसी थी कि हम करोड़ों सालों तक अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए इस सुंदर धरती को छोड़ करके जा सकते थे, पर हमने ऐसा नहीं किया। जब भी दुनिया में ये जो आजकल विश्व नेता, वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करने के लिए, कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पृथ्वी को कैसे बचाया जाए, कितने सालों से हर साल मीटिंग होती रहती है, समिट होती रहती है, शिखर सम्मेलन, परिणाम कुछ नहीं निकलता। क्यों पता है? जो डेवलपिंग कंट्री है, जो विकासशील देश है, वो कहते हैं इस दुनिया को सबसे ज्यादा बर्बाद तो ये खाते पीते देशों ने किया, जो विकसित डेवलप्ड देश है, इतना पेट्रोल डीजल गैस ये कंज्यूम करते, जितने तरह के सुख सुविधाएं भोगते हैं, जितने कल कारखाना है, जो सामान है, इन्हीं देशों ने तो ज्यादा प्रदूषण फैलाया। वो अपने सुख सुविधाओं को कम करे, उनकी गाड़ियों को कम करे, एसी चलाना कम करे, अमेरिका यूरोप जैसे देशों की समस्या है, उनके लोगों को आदत लग चुकी है। गर्मी तो छोड़िए, अभी तो बसंत ऋतु शुरू नहीं हुआ, लोग तड़प जाते हैं, गाड़ी के अंदर बाहर निकलने परेशानी हो जाती है, अभी से आदत पड़ चुका है। कैसे काम करें ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आदत नहीं। आप गरीब देश हैं, नए नए धनी बन रहे हैं। आप अपने देश में नियम बनाइए कि ज्यादा लोग गाड़ी ना चलाएं, ज्यादा लोग एसी ना यूज करें, वगैरह वगैरह। उनकी नेताओं का शिकायत है, ऐसे कैसे होगा? अभी अभी तो हम कमाना शुरू किया, आप 200 साल से भोग रहे थे, अभी हम जीभ में चस्का लेने लगे तो हमारे पर बैन लगाओगे? हमें भी भोगने दो, हमारे लोग भी थोड़ा एसी चलाए, गाड़ियों में घूमे, कारखानाओं के जो तुम सुख भोगते रहते हो वो भी हम भी जरा चस्का लें। उसका परिणाम क्या हुआ? कोई समझौता करने को तैयार नहीं। और 15 साल से, जब से मेरा ज्ञान हुआ तब से मैं देखता हूं, हर साल दुनिया भर के देशों के नेता मिलते हैं, आज तक कुछ निर्णय नहीं हो पाता है। कोई अपना सुख को घटाने को तैयार नहीं, कोई अपनी सुविधाएं घटाने को तैयार नहीं है, और हम आगे बढ़ते जाते हैं। और धीरे धीरे हम उस पृथ्वी को बर्बाद करने की ओर बढ़ते जाते हैं, और हम भूल जाते हैं शायद धरती मेरी नहीं और किसी के लिए है, मैं खा पी कर मर जाऊं आगे क्या होगा किसने देखा, आगे किस क्या होगा वो पड़ोसी के बच्चे के लिए नहीं है, मेरा बेटे के लिए, मेरे बच्चे के लिए क्या होगा, मेरे पोते के लिए क्या होगा, कि अगर जमीन का एक टुकड़ा नहीं बचेगा रहने के लिए, रास्ते में अगर इसी तरह की गाड़ियां बढ़ती गई 50 साल के बाद, आप कल्पना करते हैं आप ये इस रोड पर कैसे गाड़ी चलाएंगे? अगर हर रोज हर परिवार का हर सदस्य गाड़ी का निकाले तो क्या दशा होगी 50 साल के बाद? आपकी गाड़ी पर आवर 10 किलोमीटर भी नहीं चल पाएगी। 200 साल के बाद जब ये धरती के अंदर जो खजाना है, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह की, वो खत्म हो जाए, फिर क्या करेंगे? इसीलिए जीवन में जब नियंत्रण नहीं होता, जब हमारा भोग में नियंत्रण ना हो, सुख सुविधाओं के प्रति लालच काम ना हो, ये दुर्दशाएं होती हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति इसी बात को सिखाती थी, हमारा वैदिक धर्म इसीलिए सिखाता था कि जो कुछ आशा करते हो सब कुछ पाने की चाहत मत रखो, मिले भी कंट्रोल करो। बड़े मजेदार चीज आप देखेंगे, प्राचीन भारतीय जो लोग थोड़ा प्राचीन भारत के बारे में पढ़ते रहते हैं उनको पता होगा, हमारे यहां भी सैकड़ों हजारों विज्ञान के, आपको केमिस्ट्री पर भी एंशियंट इंडियन में बुक, इंडिया में बुक मिलेगा, आपको फिजिक्स पर मिलेगा, आपको बायोलॉजी पर मिलेगा, आपको बॉटनी पर मिलेगा, हर चीज पर ग्रंथ मिलेगा। पर आप कहेंगे भारत में फिर आधुनिक विज्ञान क्यों नहीं पनपा? क्योंकि हमारे ऋषियों का यह कभी उद्देश्य नहीं रहा इससे हम सुख सुविधाओं के साधन निकाले, उनका उद्देश्य रहा इससे हम ज्यादा, जितना ज्यादा से ज्यादा आवश्यक चीजें तो करें पर ज्यादा सुख सुविधाओं के सामान ना निकाले। हम सुखी सुविधाओं के साथ जीने से, क्योंकि इंसान की कोई सीमा नहीं है, आज हमारे और आपके पास इतने सुख सुविधाओं के साधन है जो 100 साल पहले कल्पना नहीं की जा सकती, 50 साल पहले भी कल्पना नहीं की जा सकती, उसके बावजूद भी आज हम परेशान है। वो ये मोबाइल फोन 20 साल पहले नहीं था, लोग आश्चर्य होते थे, अच्छा ऐसा एक फोन निकलेगा कि आप कहीं भी घूम के बात कर सकते हो। आज हमें मोबाइल फोन में मजा नहीं आता है, अब तो आईफोन आ गया, आईफोन से आगे 4G 8G पता नहीं क्या क्या आने, तो भी हमें संतुष्टि नहीं है, उससे कुछ नहीं होता सिवाय हमारा शरीर, हमारा मन भी धीरे धीरे, क्योंकि आप जब आपका बॉडी काम नहीं करेगा, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, तो हम बीमारियां भी पालते हैं। जो चीजें हम शरीर, अब तो ग्रोसरी के लिए जाने के लिए 2 किलोमीटर के लिए भी गाड़ी निकालनी पड़ती है, तो फिर बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज होता है, मोटापा। फिर क्या करते हैं, फिर एक्सरसाइज करने जाते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए पार्क में जाते हैं, वो भी गाड़ी लेकर के जाते हैं। पर तुम्हें एक्सरसाइज ही करना है तो दौड़ के जाओ, नहीं उसमें भी पेट्रोल फूकेंगे, जिससे कि बात, हम ऐसे माहौल में आज जीते हैं, आपके चारों तरफ आप, हम पूरी तरह रेडिएशन के बीच में जीते हैं, ये मोबाइल के, ये कंप्यूटर के, सैटेलाइट के, दुनिया भर के तो रेडिएशन घूमते रहते, उसी के बीच में हम जीते हैं, कैंसर तो होगा। ये क्यों है? क्योंकि सुख सुविधाओं का इस साइड इफेक्ट है। उपनिषदों में बड़ा दो शब्द, दो सुंदर शब्द था, कह के समाप्त करूंगा, श्रेय और प्रेय। कठोपनिषद में आती है, श्रेय और प्रेय दो बहने हैं। प्रेय मतलब जो प्लेजर, जो खुशी दे, अच्छा लगे, मेटेरियल लाइफ। श्रेय जो अच्छा लगता नहीं है पर जो अच्छा है। श्रेय और प्रेय दो बहने हैं, व्यक्ति के पास गए तो जिसको दुनियादारी, दुनिया की सुख चाहिए, उसने प्रेय को चुना, और जो समझदार, उसने श्रेय को चुना। इसको आप ऐसे समझें, दो लड़के शादी के लिए लड़की चुनने गए, एक बिल्कुल मॉडर्न है, एक बिल्कुल अंदर से मॉडर्न है, उसकी सोच, उसका विचार, उसके मॉडर्न है, एक बाहर से मॉडर्न है, देखने में अट्रैक्टिव है, हर तरह के उसमें आकर्षण है, एक प्रेय है, अच्छा लगता है, एक इतने बाहरी आवरण से बिल्कुल सीधी सादी है, अंदर से बड़ा स्ट्रांग है, मजबूत है, ज्ञानी है, विदुषी है। एक ने चुना प्रेय को, इसीलिए जो गर्लफ्रेंड उसको प्रेयसी बोलते हैं। दूसरे ने श्रेय को चुना, जो सीधी सादी है, ज्यादा उसमें बाहरी, आधा किलो मेकअप कहीं नहीं दिखता, शायद आधा ग्राम का भी मेकअप नहीं है, बिल्कुल सीधी सादी है, उसने चुना। 2 साल के बाद दोनों दोस्त मिले, उपनिषद की आख्यायिका सुना रहा हूं, एक के बाल उड़ गए थे सारे, 40 साल की उम्र में 60 साल का लग रहा था। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ, तुमने तो बड़े अच्छे, अच्छी बीवी चुनी थी ना। हाँ, वो प्रेय जरूर है यार, प्रेय का अपना लिमिटेशन होता है, उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है, मेंटेन कराते कराते मैं बुढ़ा हो गया, कभी सुख नहीं मिला शुरू के 1-2 साल के बाद, बस खर्चता रहा। तुम तो बड़े चंगे लगते हो, वो हमेशा से, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई शांति के जीवन है। तो उपनिषद कहता है, प्रेय जो अच्छा लगता है उसका परिणाम हमेशा बुरा होता है। इसीलिए जो अच्छा लगे, इसका अर्थ ये नहीं कि जो अच्छा लगता है हम उसको भोगे नहीं, उसमें रेगुलेशन लगाए, ये तो नेचर है। श्रेय जो अच्छा लगता नहीं है पर वो बेटर होता है। बच्चों को करेला खाना पसंद नहीं पर अगर बच्चा रोज करेला खाए तो कोई नुकसान नहीं। बच्चों को मीठा खाना पसंद है पर आप रोज मीठा खाए तो कितनी बीमारियां पाल के बैठेंगे। हमने इस पर्यावरण को, धरती को, जो जो चूसा, जो दोहा, उसके जैसे गाय के ये मशीन से दूध निकालते हैं तो उसके खून तक भी चूस लेते हैं, हम ये धरती रूपक मां को इतना चूसा, इतना चूसा, धरती बर्बादी के कगार पर है। इसीलिए सज्जनों, मित्रों, ये डे मनाने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम उसके बारे में सचेत रहे, कॉन्शस रहे, हम, मतलब हम नागरिक, हमारा सरकार, हमारे वैज्ञानिक, हमारे सोच, कहां तक हम सुख के चक्कर में इस धरती का कितना उपयोग कर सकें और किस तरह हम पाप और पुण्य कमाते हैं उस पर विचार करें। जब आप आहुतियां देते हैं यज्ञ में, आप यही बोल के आहुतियां देते हैं, इदम अमुकाय स्वाहा इदं नमम, ये जो आहुति में दे रहा हूं ये मेरा नहीं है। ये कंसेप्ट इसीलिए था, इंसान अगर ये समझ जाए कि ये मेरा नहीं है तो वो उतना ही प्रयोग करेगा जितना उसका जरूरत है, वो लूटेगा नहीं, वो चूसेगा नहीं, वो खसोटेगा नहीं। यही यज्ञ की भावना थी। अगर संसार में ज्यादातर लोगों तक ये यज्ञ की भावना हम पहुंचा सकते, खुद मानने के बाद हम दूसरों तक पहुंचा सके, तो शायद इस धरती को हम अगले लाखों सालों तक, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी तक सुरक्षित रख सकेंगे। इस सुंदर ग्रह को जो दुनिया में इस महाकाश में बड़े बिरला है, ऐसा प्लैनेट, ऐसा ग्रह, उसको हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। नहीं तो हम अपने उस विज्ञान के घमंड के चक्कर में, हम अपनी बुद्धि के घमंड के चक्कर में, अपने सुख सुविधाओं को भोगने की लालच के चक्कर में इस धरती को हम 50 साल में बर्बाद कर देंगे। ईश्वर ने यह दी है, इसका उपयोग करना हमारा काम है।